श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके शिवम प्रभु, कितने दिन बाद क्लास हो रहा है? ऑलमोस्ट 2 हफ्ते निकल गए ना।
यस, 23rd या 24th जनवरी जैन को हुआ था लास्ट, उसके बाद
उसके बाद के वीकेंड में मैं चला गया था। ओके हमने लास्ट लास्ट हमने पढ़ा था जब पृथु महाराज ने भूमि भूमि की वो की थी, भूदेवी को, भूदेवी एक गाय के रूप में आई थी और पृथु महाराज ने उनका दोहन किया था और उससे उन्होंने धरती, उनके जो भी राज्य के जो लोग थे उनको जो भी वस्तुओं की आवश्यकता थी उस आवश्यकताओं को प्राप्त किया था। वहां तक हमने साइड डिस्कस किया था। उसके आगे आता है कि पृथु महाराज के शासन काल में फिर धरती माँ ने उनके जितने भी सारे जीव थे, जितने भी जीव धरती पे थे, उन सभी के लिए उन्होंने सफिशियंट वस्तुओं को प्रकट किया और पृथु महाराज बहुत संतुष्ट थे धरती के साथ इस प्रकार से। और वो धरती को इस प्रकार से स्नेह कर रहे थे जैसे कि कोई पिता अपनी पुत्री को स्नेह करता है। हालांकि क्योंकि पृथु महाराज स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, धरती उनकी पुत्री के समान भी है, तो इस प्रकार से वो धरती से स्नेह करते थे जैसे अपनी पुत्री से स्नेह कर रहे हो। और उस समय धरती बहुत ऊंची नीची भी थी। पृथु महाराज ने धरती को अपने अपने हथियार के द्वारा धरती को समतल कर दिया, बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ दिया, नहीं तो धरती पर रहने का स्थान बहुत कम था क्योंकि धरती बहुत ज्यादा ऊंची नीची थी पृथु महाराज के समय के पहले। तो पृथु महाराज ने धरती को लेबल किया और फिर वहां पे उन्होंने अलग अलग प्रकार के रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए और अलग अलग लोगों को ये चीज अलॉट की। इस तरह से पृथु महाराज ने पूरी धरती के ऊपर बहुत सारे गांव, बहुत सारे सिटी, बहुत सारे खेती करने के स्थान और अलग अलग वस्तुओं को पृथु महाराज ने प्लान किया। वास्तविकता में पृथु के पहले इस धरती पर सिटी प्लान नहीं होती थी। पृथु महाराज ने प्लान सिटी प्रारंभ की। पहली बार पृथु महाराज ने सिटी प्लानिंग की जिसमें कि किस कहाँ पे सिटी रहना चाहिए, कहाँ पे गांव होना चाहिए, कहाँ पे फार्म्स रहना चाहिए, कहाँ पे खेती का जगह होना चाहिए, कहाँ पे गायों को चरने के लिए भेजना चाहिए। उसके पहले लोग केवल अपने आवश्यकता के आधार पे अपने रेसिडेंस बना लेते थे, मकान बना लेते थे। पृथु महाराज ने पहली बार प्लानिंग चालू की। प्लानिंग कमीशन जो है पृथु महाराज से स्टार्ट हुई। और अभी जो मॉडर्न प्लानिंग होती है, अगर वैदिक समय में जो प्लानिंग होती थी वो प्लानिंग पृथु महाराज के द्वारा प्रारंभ की गई। किस प्रकार से सिटी को बसाया जाना है, कौन कौन से स्थान किसको अलॉट किया जाना है, वो प्लानिंग बहुत साइंटिफिक है। पृथु महाराज से जो स्टार्ट हुई बहुत साइंटिफिक प्लानिंग है वो। कुछ समय के बाद पृथु महाराज ने 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करना चालू किया। अश्वमेध यज्ञ, जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्र पद की प्राप्ति कर सकता है। हालांकि पृथु महाराज के यज्ञ करने के पीछे ये मोटिव नहीं था कि वो इंद्र पद की प्राप्ति करें। वो केवल चाहते थे कि भगवान विष्णु को संतुष्ट करें, इसलिए पृथु महाराज ने यज्ञ किए थे। जस्ट अ मिनट। तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए और वो यज्ञ करे जा रहे थे। कुछ जगह पे ऐसा लिखा रहता है कि पृथु महाराज को पता ही नहीं था कि कितने यज्ञ हो गए। यज्ञ के बाद यज्ञ वो लगातार करते जा रहे थे और ब्रह्मावर्त नाम के स्थान में यज्ञ कर रहे थे। इसमें ब्रह्मावर्त नाम के स्थान में सरस्वती नदी प्रभावित होती है और वहां पर बहुत बड़ा यज्ञशाला बनाया गया था। और उसके बाद गायों ने दूध सप्लाई किया, खुद भूदेवी ने आके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की और वृक्षों ने बहुत सारा जल और फल सब कुछ प्रदान किया, नदियों ने जल प्रदान किया। परंतु जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है और बड़े बड़े यज्ञ करता है, तो इंद्रदेव को इनसिक्योरिटी हो जाती है। क्योंकि इंद्रदेव को लगता है कि ये व्यक्ति अगर यज्ञ कर रहा है तो हो सकता है ये मेरे पोस्ट के लिए यज्ञ कर रहा हो। इसलिए भक्तों को भी ये सावधानी की आवश्यकता है कि इंद्रदेव बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर हमारी भक्ति बहुत अच्छे से चलती है, बहुत स्ट्रांगली भक्ति करते हैं, तो इंद्रदेव इनसिक्योर हो जाते हैं, देवता इनसिक्योर हो जाते हैं, कि क्योंकि भक्ति करने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है और देवताओं को लगता है कि इस पुण्य के बदले में अगर इसने मेरी पोस्ट मांग ली तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कई बार कुछ कुछ देवता लोग भक्तों को बहुत टेस्ट करते हैं। इसलिए भक्ति करते समय कोई भी भोग की इच्छा करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि भौतिक भोगों की इच्छा करेंगे तो देवताओं के द्वारा समस्या हो सकती है। परंतु अगर हम शुद्ध भक्ति का पालन करने का प्रयास करेंगे, तो भले ही हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं अभी तक, परंतु अगर शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन करने का प्रयास करेंगे तो देवताओं को पता चलेगा कि हाँ, इसको कुछ नहीं आवश्यकता है, केवल भगवान की भक्ति करने के लिए कर रहा है। नहीं तो देवताओं को ये लगा रहता है कि कहीं इसने इतने अच्छे से भक्ति की और फिर कहीं इसके मन में इच्छा होगी देवता बनने की तो मेरी पोस्ट चली जाएगी, इसलिए देवता लोग परेशान करते हैं। इसलिए भक्ति का प्रयास करना चाहिए तो शुद्ध भक्ति करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली बोला है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामय, क्योंकि मिक्स्ड भक्ति करने से देवता लोग हमारे टेस्ट कर सकते हैं। तो हालांकि पृथ्वी महाराज को पता नहीं था कि 1000 मतलब 100 यज्ञ, 100वां यज्ञ चल रहा है, ऑलरेडी 99 यज्ञ उन्होंने कर लिए थे और 100वां यज्ञ वो कर रहे थे, उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये 100वां यज्ञ चल रहा है। परंतु पृथ्वी महाराज के यज्ञ करने से इंद्र को समस्या हो गई। इंद्र का नाम है सत्क्रतु, सत्क्रतु मतलब जिसने 100 यज्ञ किए हैं, तो उसको ये आइडिया टॉलरेट नहीं हुआ कि पृथ्वी महाराज उससे भी आगे निकल जाए, इसलिए इंद्र जो है बहुत ईर्ष्यालु हो गए। तो जब पृथ्वी महाराज अंतिम यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र वहां पे आए अदृश्य होके और यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले गए, इनविजिबल रूप से आके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। और अत्रि मुनि ने देख लिया कि इंद्र इस प्रकार से भाग रहे हैं घोड़ा चुरा के, तो उन्होंने पृथ्वी महाराज के पुत्र को बताया कि इंद्र चोरी करके जा रहे हैं, और पृथ्वी महाराज के पुत्र ने तुरंत अपना धनुष बाण लिया और इंद्र के पीछे पीछे भागे और इंद्र को चैलेंज किया कि रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो। और उसी समय इंद्र ने अपना ड्रेस बदल लिया, इंद्र ने एक सैफरन ड्रेस, सैफरन कलर का एक साधु का ड्रेस पहन लिया, क्योंकि पहले के समय में साधु को कोई कुछ बोलता नहीं था, मारते नहीं थे, तो साधु का ड्रेस पहन लिया। उनके पूरे शरीर में राख को लगा लिया और उनके बालों को पूरा जूड़ा बना लिया सिर के ऊपर। तो जब पृथु के पुत्र ने देखा कि इंद्र तो एक ये तो कोई साधु पुरुष है, तो उसने इनको नहीं मारा और फिर अपने घोड़े को वापस लेके आ गए। उसके बाद जब पृथु के पुत्र फिर वापस लौटे, तो अत्रि ने उनको ऑर्डर दिया कि तुम ऐसे वापस मत आओ, वो स्वर्ग के राजा है, वो बार बार परेशान करेंगे, वो नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता यज्ञ संपन्न करें, इसलिए वो फिर से परेशान करेंगे। तो उस समय उन्होंने नहीं इस तरह से देखा, और पर अगली बार फिर से इंद्र कुछ देर में आए और फिर इंद्र घोड़ा चुरा के भाग गए। इस बार जब फिर से पीछे से ये भागे तो इंद्र ने एक दूसरा रूप बना लिया, फिर से एक बोगस साधु का रूप बनाया और बार बार इनविजिबल हो गए। और जब ऋषियों ने देखा कि पृथु के पुत्र इतने शक्तिशाली हैं कि बार बार इंद्र को हरा सकते हैं, तो उन्होंने उनका एक नाम दिया विजिताश्व, जिसने इंद्र से घोड़े को जीता था। परंतु फिर से इंद्र आ गया, इंद्र फिर से आए और फिर से बहुत सारा अंधेरा चारों तरफ प्रकट किया और पूरे यज्ञशाला को ढक लिया, और फिर इंद्र ने फिर से घोड़े को उठाया और फिर से भाग गए। फिर से अत्रि मुनि ने विजिताश्व को बोला कि इंद्र भाग रहे हैं, और जब पृथ्वी महाराज के बेटे उनके सामने गए तो इंद्र अभी सन्यासी के जैसे बन गए। तो पहले विजिताश्व को लगा कि इस सन्यासी को कैसे मारे, परंतु अत्रि ने बोला तो उन्होंने धनुष बाण को ऊपर लगाया और इंद्र को जस्ट मारने वाले थे, उसी समय इंद्र ने घोड़ा छोड़ दिया और फिर से गायब हो गया। तो इस प्रकार से बार बार इंद्र सामने आते थे, घोड़ा को चुरा के ले जाते थे, और जब उनको पकड़ने जाते थे तो वो बोगस साधु का रूप बनाते थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जितने भी ये संप्रदाय चालू हुए, साधुओं के जो संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय हम भारत में देखते हैं, बोगस संप्रदाय, सब इंद्र से जनरेट हुए। इंद्र ने अपनी ईर्ष्या के कारण ऐसे गलत गलत ड्रेस पहन के, साधुओं के ड्रेस पहन के, अलग अलग नए नए संप्रदायों को जन्म दिया। कई बार ऐसा हुआ, तो बाद में ऋषि मुनियों को गुस्सा आई। इसी तरह से इंद्र एक बार कपाली का साधु बन के आए और एक बार इम्पर्सनलिस्ट साधु बन के आए। तो लास्ट में क्या हुआ, राजा पृथु ने खुद अपना धनुष बाण उठाया और इंद्र को मारने के लिए गए। और जब ऋषि मुनियों ने देखा कि महाराज पृथु खुद इंद्र को मारने के लिए जा रहे हैं, तो ऋषियों ने बोला, नहीं महाराज, आप यज्ञ कर रहे हैं, आपको गुस्सा करना ठीक नहीं है यज्ञ के बीच में। ये इंद्र को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारे 2 मिनट का काम है, इसको हम अभी मार देंगे। तो सभी ऋषि मुनि ने कुछ मंत्र पढ़ना चालू किया और यज्ञ में आहुति डालने ही वाले थे। जैसे ही वो यज्ञ की आहुति यज्ञ के अंदर जाती और इंद्र भी यज्ञ की अग्नि में गिर के खत्म हो जाते, तो जस्ट वो डालने ही वाले थे, उसी समय ब्रह्मा वहां पे आ गए, भगवान ब्रह्मा वहां पे आ गए। भगवान ब्रह्मा ने बोला कि हे ब्राह्मण, आपको जानना चाहिए कि इंद्र जो है भगवान विष्णु के सहकर है, भगवान विष्णु के अंडर गाइडेंस में कार्य करते हैं। आप तो देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपको समझना चाहिए कि वो सभी देवता भगवान विष्णु से कनेक्टेड हैं, और अगर आप देवों के राजा इंद्र को ही मार डालेंगे तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कैसे करेंगे। इंद्र तो भगवान विष्णु के प्रधान प्रतिनिधि हैं, अगर आप इंद्र को ही मार डालेंगे तो फिर भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। और ब्रह्मा जी ने बताया कि ऑलरेडी महाराज पृथु के यज्ञ को रोकने के लिए इंद्र ने इतने सारे गलत गलत अपसंप्रदाय चालू कर दिए हैं, अगर आप यज्ञ को नहीं रोकेंगे तो इंद्र अभी भी बोगस प्रकार के संन्यास संन्यास के ड्रेस पहन पहन के पूरे संसार में अधर्म को फैला देंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 100वें यज्ञ की जरूरत नहीं है, केवल 99वें यज्ञ करो, 100वें यज्ञ की जरूरत नहीं है। और पृथु महाराज को भी समझाते हैं कि पृथु महाराज, आप तो शुद्ध भक्त हो, आपको क्या 100 यज्ञ की जरूरत है, आप 99 करो चाहे 100 करो, आपको इंद्र की पोस्ट तो चाहिए नहीं, परंतु आप 100 करेंगे तो इंद्र बेचारा इनसिक्योर हो जाएगा, वो बार बार आपको परेशान करेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी इंद्र को समझाना चाहिए, गलती इंद्र की है, परंतु ब्रह्मा जी इंद्र को नहीं समझाते हैं, पृथु को समझाते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं, एक कॉमन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कभी अगर छोटा भाई होता है, बड़ा भाई होता है, छोटा भाई अगर कोई चीज के लिए जिद करता है, तो जिद करते करते रोने लगता है, तो माता पिता आते हैं, भले ही वो वस्तु बड़े भाई की है और छोटा भाई गलत है, परंतु माता पिता बड़े भाई से बोलते हैं, देखो वो छोटा है, उसको दे दो, तुम क्यों पीछे पड़े हो। तो इस प्रकार से जब भगवान ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र की गलती होने के बावजूद पृथु को बोला कि आप तो शुद्ध भक्त हो, आपको 100 यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आप 99 यज्ञ करो, आप तो भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं। और ये इंद्र जो है ये छोटा बच्चा जैसा है, अगर आप 100वां यज्ञ करेंगे तो ये परेशान रहेगा, बार बार आपको परेशान करेगा और अधर्म फैलाएगा, इसलिए इसको रहने दो, 100 यज्ञ करके इसको रहने दो, आप 99 यज्ञ पे संतुष्ट हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी पृथु को समझाते हैं और बोलते हैं कि अभी आप पृथु से इंद्र से गुस्सा मत होइए और अपना आप 99 यज्ञ रोक दीजिए, 100वें यज्ञ की आवश्यकता नहीं। आपको समझना चाहिए कि कोई वस्तु अगर बार बार हो रही है तो हम उस चीज को बदलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा नहीं है। और आपका जो आपके जो इस संसार में अवतार लेने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी कोई 100 यज्ञ करने से पूरा होने वाला नहीं है। और वैसे भी इंद्र ने इतने सारे गलत गलत ड्रेस पहन के इतने सारे गलत गलत साधुओं को जन्म दिया है कि वो साधु अभी आगे आने वाले समय में पूरे संसार में अधर्म को फैलाएंगे, तो आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी पृथु महाराज को बताते हैं और पृथु महाराज छोड़ देते हैं। जब पृथु महाराज को ब्रह्मा जी का आदेश मिलता है तो यज्ञ करना छोड़ देते हैं और उसी समय वो अपना स्नान पूरा करते हैं, यज्ञ खत्म हो जाता है। तो सामान्यतः यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान विष्णु आते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल केस हुआ कि यज्ञ कैंसिल करने से भगवान विष्णु आ गए। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति यज्ञ पूरा करता है तो भगवान विष्णु यज्ञ की पूर्णाहुति के समय आते हैं, परंतु यहाँ पे 100 यज्ञ पूरा करना कैंसिल किया तो भगवान विष्णु आ गए। तो एक यूनिक केस था वो, इसलिए भगवान विष्णु आने के बाद बोलते भी हैं कि पृथु महाराज से कि आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार मुझे इतना अच्छा लगा, आपने कभी भी ये लालच नहीं दिखाया कि आप 100वां यज्ञ इंद्र बनने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे शुद्ध भक्त हैं तो इसलिए आपको इस यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। और सामान्यतः लोग इस प्रकार का चांस छोड़ते नहीं है, परंतु आपने केवल ब्रह्मा जी के बोलने से एक बार में अपना पूरी तरह से डिटेच हो गए, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और भगवान विष्णु जब आए तो उनके साथ में इंद्र भी पीछे पीछे आते हैं, इंद्र और देवता बाकी भी पीछे पीछे आते हैं, और इंद्र का सिर झुका रहता है, क्योंकि तब तक इंद्र को समझ में आ जाता है कि मैंने कितना पागलपन किया है और इस यज्ञ को रोकने के लालच में मैंने कितने सारे गलत गलत संप्रदाय पैदा किए। तो इंद्र बहुत उस समय शर्मिंदगी महसूस करते हैं और भगवान विष्णु महाराज पृथु को बोलते हैं कि हे राजन, इंद्र ने आपके 100वां यज्ञ बिगाड़ दिया है और अभी इंद्र को मैं अपने साथ में लाया हूँ, उसको आप माफ कर दीजिए। आप तो उसके बड़े भाई जैसे हैं, माफ कर दीजिए और 100वां यज्ञ मत करिए। अच्छा हुआ आपने नहीं किया। तो फिर भगवान विष्णु इंद्र और पृथु महाराज दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, इंद्र पृथु से माफी मांगते हैं और पृथु भी अपने गुस्से का त्याग कर देते हैं। भगवान विष्णु इंद्र को पृथु महाराज को बताते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में स्ट्रांग शक्तिशाली होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों के लिए अच्छा कार्य करते हैं, वो किस कभी दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं करते हैं। और चूंकि आप मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं, मुझे प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर ये गुस्सा ये वस्तुएं नहीं दिखाई देनी चाहिए। और मेरे भक्तों का विजन, मेरे भक्तों की दृष्टि इतनी क्लियर होती है कि वो कभी भी भौतिक सुख या दुख से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा आप संतुष्ट रहिए और सभी को इक्वली आप व्यवहार करिए। अगर आप इस प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपसे बहुत प्रेम करेंगे और बहुत जल्दी आपको इस संसार में चार चार मुक्त पुरुष, चार कुमारों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा और वो कुमार आपको बहुत सारे निर्देश भी प्रदान करेंगे, बहुत सारे गाइडेंस भी प्रदान करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु बताते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे मुझसे वरदान मांगिए। आपको क्या वरदान मांगना है मुझसे मांगिए। इस प्रकार से भगवान भगवान विष्णु पृथु महाराज से पूछते हैं। और इसमें एक जगह डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान विष्णु वहां से जाते हैं और फिर से लौट के आते हैं। वो बोलते हैं, पृथु मैं आपके व्यवहार से, आपके एसोसिएशन से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं वैकुंठ लोक वापस जाना नहीं चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इस प्रकार से भगवान विष्णु इतने खुश हो जाते हैं पृथु महाराज से, पृथु महाराज की भक्ति के द्वारा। और जब इंद्र ऐसे बगल में खड़े थे, उन्होंने भगवान विष्णु के स्पीच सुना तो इंद्र को और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने कितना गलत कार्य किया है। और फिर पश्चाताप करते हुए इंद्र जो है पृथु महाराज के चरणों पर गिर गए। और चूंकि पृथु महाराज महान वैष्णव थे, उन्होंने सारे गुस्सा को त्याग के इंद्र को उठाया और उनको गले से लगा लिया। उसके बाद पृथु महाराज ने भगवान विष्णु की पूजा की और भगवान जाना चाहते थे परंतु भगवान नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वो पृथु महाराज के व्यवहार से बहुत आकर्षित हो चुके थे और पृथु की आंखों में पूरी तरह से आंसू भरे हुए थे। इसलिए उन्होंने भगवान को सिंपली उनके चरणों में प्रणाम किया और तो भगवान के सामने वो दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहे। पहले भगवान विष्णु, चूंकि भगवान सामान्यतः देवता लोग जो आते हैं, वो देवता लोग कभी भी धरती पे आते हैं तो धरती पे पैर नहीं रखते, जमीन के ऊपर रहते हैं, क्योंकि देवता लोग जब, जैसे कोई व्यक्ति कोई बहुत ऊंची जगह से जाता है तो नीची जगह पे जाता है तो वो ज्यादा बैठता नहीं, वहां पे पैर भी रखना नहीं चाहता। इसी तरह से देवता लोग जो आकाश में रहते हैं, जो कि स्वर्ग लोक में रहते हैं, वो जब धरती पे आते हैं तो धरती उनको उतनी क्लीन नहीं लगती, तो वो जब धरती पे कदम नहीं रखते हैं। तो भगवान विष्णु पहले धरती पे कदम नहीं रख रहे थे क्योंकि वो देवताओं के समान व्यवहार कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी महाराज का व्यवहार, पृथ्वी महाराज का चरित्र इतना अच्छा है, तब उन्होंने धरती पे स्पर्श किया। तो भगवान विष्णु का एक हाथ गरुड़ के शोल्डर के ऊपर था और दूसरे हाथ से वो पृथु को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। इस प्रकार से भगवान विष्णु पृथु महाराज के सामने उपस्थित हुए और फाइनली पृथु महाराज ने, बहुत देर तक उनकी आंखों से आंसू आते रहे परंतु बाद लास्ट में उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछ के पृथु महाराज ने अपनी प्रार्थनाएं प्रारंभ की। ये प्रार्थनाएं बहुत सुंदर प्रार्थना है, श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद में आती है 19 अध्याय में पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं। कई श्लोक हैं उसमें पृथु महाराज की प्रार्थना के, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। पृथु महाराज पहले बताते हैं, हे भगवान, आप सभी प्रकार के आशीर्वाद देने में सक्षम हैं, तो इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे आशीर्वाद क्यों मांगेगा जो कि भौतिक संसार के कामी लोग भी मांगते हैं, और कोई भी बुद्धिमान आपसे मुक्ति भी क्यों मांगेगा जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो केवल आपके चरणों का रस प्राप्त करना चाहेगा, आपके चरणों की सेवा करना चाहेगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे कम से कम 1,000, कम से कम 10 लाख कान हो, जिससे कि मैं हमेशा आपके बारे में सुन सकूं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, वो एक कान उनको सफिशियंट नहीं होता भगवान के बारे में सुनने के लिए। पृथ्वी महाराज यहाँ पे 10 लाख कान मांग रहे हैं, जिससे कि हम भगवान के बारे में प्रॉपरली सुन सकें। हमारे पास केवल 2 कान दिए गए हैं, तब भी हम भगवान का नाम सुनने में हमें कठिन होता है, सुनते सुनते सुन नहीं पाते, और सुनते हैं तो नींद आ जाती है। तो समझना चाहिए कि हमारी कितनी खराब अवस्था है और कितने ऊपर तक जाना है। अभी जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान से, भगवान के बारे में सुनना उनको इतना पसंद होता है कि उनको लगता है कि 2 कान क्यों दिए गए, कम से कम 10 लाख कान होते तो भगवान के बारे में सफिशियंटली सुन सकते। तो वो शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। दैट मीन्स भगवान के बारे में सुनने में हमारा इंटरेस्ट जितना बढ़ता जाता है, समझना चाहिए कि भक्ति में प्रोग्रेस हमारी उतनी ज्यादा हो रही है, और जितना इंटरेस्ट कम होता जाता है उतना हमारा भक्ति में डाउनफॉल हो रहा है। उसके आगे पृथ्वी महाराज बताते हैं कि हे भगवान, अगर आपके बारे में कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों से एक बार भी सुन लेता है तो वो कभी आपका संग छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी केवल ये इच्छा है कि मैं हमेशा आपके चरणों की सेवा करता रहूं, जैसे कि लक्ष्मी जी सेवा करते हैं। परंतु इस सेवा को करने में मुझे ये डर रहता है कि चूंकि मैं और लक्ष्मी जी हमेशा एक ही सेवा करेंगे, आपके चरणों में चरणों को दबाएंगे, चरणों की सेवा करेंगे, तो हो सकता लक्ष्मी जी और मेरे बीच में लड़ाई हो कि किसको ये सेवा करनी है। क्योंकि आध्यात्मिक संसार में भी कई बार कॉम्पिटिशन होता है, तो अगर लक्ष्मी जी मुझसे गुस्सा हो जाए कि मैंने उनकी सेवा पे अधिकार किया, उनकी सेवा पे अधिकार जमाने की कोशिश की, तो मैं भगवान में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप तो गरीब लोगों को ज्यादा मदद करते हैं। लक्ष्मी जी तो बहुत धनी है, बहुत सौभाग्यशाली है, मेरे अंदर कोई सौभाग्य नहीं, मैं तो दुर्भाग्य हूँ। तो अगर लक्ष्मी जी मुझसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि मैं उनकी सेवा में भी अपना अधिकार चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद करिएगा, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है। हो सकता लक्ष्मी जी गुस्सा होकर बहुत दूर भी चले जाए, परंतु आप मेरी मदद करिएगा, क्योंकि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा और कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से भगवान पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रार्थना करते हैं कि मैं तो आपका एक अनन्य भक्त हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे भौतिक भोग के लिए क्या क्या चाहिए। केवल ऐसे व्यक्ति जो कि आपकी माया शक्ति से परेशान है और जो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल चुके हैं, वही भौतिक संसार में सुख चाहते होंगे। मैं इस प्रकार के आशीर्वाद को नहीं चाहता हूँ, इसलिए कृपया मुझे वही दीजिए जो कि आप सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा है। भगवान से इसी प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, चूंकि माता पिता के सामने बच्चे को अलग से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, माता पिता बच्चे को सब कुछ प्रदान करते हैं, तो भगवान से हमें, शुद्ध भक्त तो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। अगर कुछ मांगना भी हो तो डिमांड नहीं करना चाहिए कि भगवान मुझे ये चाहिए है, ये बोलना चाहिए कि भगवान अगर आप मेरी इस प्रकार से इच्छा है, परंतु अगर आपको ठीक लगता है कि ये मेरी भक्ति में सहायक होगा तो आप प्रदान करिएगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। और उस केस में फिर हमें डिटैच रहना चाहिए। अगर नहीं मिला, दैट मीन्स हमारी भक्ति के लिए वो सूटेबल नहीं था, इसलिए भगवान ने प्रदान नहीं किया। पृथ्वी महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता के समान आप मुझे वही दीजिएगा जो जो कि आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा है, जो वास्तविकता में मेरे लिए सबसे अच्छा है वो आप मुझे प्रदान करिएगा। मुझे तो नहीं पता कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, तो आप अपने हिसाब से प्रदान करिएगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए ये सुनके कि पृथ्वी महाराज ने कोई भी भौतिक वर नहीं मांगा, इसलिए भगवान उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उनको बोलते हैं कि बहुत मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप हमेशा मेरी शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, और आप बहुत बुद्धिशाली, आपने खुद समझाया है, और ये वास्तविकता में सच है कि अगर कोई शुद्ध भक्ति में लगता है तभी वो माया शक्ति से बाहर आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा मेरे आदेशों को पालन करना चाहिए, और जो मेरे आदेशों को हमेशा पालन करता है उसको हमेशा सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद महाराज पृथु ने सभी देवताओं को भी पूजन किया, ऋषि मुनियों की भी पूजन की, और सभी बाकी जीवों की भी पूजन किया। और फिर से महाराज पृथु ने विष्णु जी की पूजा की, और फिर भगवान वहां से गए अपने धाम में वापस। उस भगवान के जाने के बाद राजा पृथु ने उनको प्रणाम किया, उसके बाद अपने राज्य में वापस आ गए। और जब महाराज पृथु यज्ञशाला से अपने राज्य में आ गए हैं, तो राज्य की सुंदरता का फिर से वर्णन दिया गया है, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले की क्लास में भी उनके राज्य की सुंदरता का वर्णन किया गया था। और जिस प्रकार से महाराज पृथु अपने राज्य के अंदर महल के अंदर जाते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं तो उनके जो पुजारी हैं, जो भी पंडित हैं, वो वैदिक मंत्रों का जप करते हैं, और अलग अलग प्रोफेशनल सूत बंदित ये सभी उनको प्रार्थना करते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट और कॉमन लोग राजा को, राजा का वेलकम करते हैं। और इतने सारे वेलकम, इतने सारे रिसेप्शन के बाद भी भगवान पृथु को, राजा पृथु को कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ। वो धरती पे शासन एकदम इस प्रकार से धरती पे शासन कर रहे थे जैसा कि कोई शुद्ध भक्त या आदर्श राजा धरती पे जिस प्रकार से शासन करता है, उस प्रकार से महाराज पृथु धरती पे शासन कंटिन्यू कर रहे थे। और महाराज पृथु का शासन, इसमें लिखा है कि महाराज पृथु का कोई शत्रु नहीं था और उनका शासन पूरी धरती पर सभी के ऊपर था, केवल ब्राह्मण और वैष्णव उनके आदेशों से ऊपर थे। इसमें लिखा है, भागवत में लिखा है क्लियरली कि पृथु महाराज के आदेशों, आदेश सभी को मान्य होते थे, परंतु ब्राह्मण और वैष्णव जो थे वो पृथु महाराज के आदेशों के अंडर में नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव कभी किसी के अंडर में नहीं होते, भगवान के अंडर में होते हैं। तो सामान्यतः ब्राह्मण और वैष्णव राजा के अंडर भी नहीं होते, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। पृथु महाराज कहाँ पे रहते थे? गंगा यमुना के बीच का जो स्थान है वहां पे पृथु महाराज रहते थे। ऐसा लगता था कि वो स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। कुछ समय बाद पृथु महाराज ने फिर से एक यज्ञ प्रारंभ किया, और उस सभी उस यज्ञ को संपूर्ण करने के बाद जब पृथु महाराज यज्ञ के बीच में खड़े हुए तो ऐसा लगा कि एक पूर्ण चंद्रमा वहां पे खिला हुआ है पृथु महाराज के रूप में। पृथु महाराज का शरीर बहुत लंबा था और बहुत स्वर्ण कलर था, उनकी आंखें बहुत चमकीली थी सूर्य के समान, और उनके दांत, उनके जो स्माइलिंग फेस था उसमें उनके दांत बहुत सुंदर दिखाई देते थे। पृथु महाराज ने जब यज्ञ प्रारंभ किया तो अपने राजसी वस्त्रों को निकाल के साधुओं के वस्त्र पहने, और पृथु महाराज ने फिर सभी को बहुत ध्यान से आशीर्वाद दिया। अपने जितने भी नागरिक थे उन सभी को उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए, इंस्ट्रक्शन दिए। महाराज पृथु जब अपने नागरिकों से बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पर्सनल रियलाइजेशन बता रहे हैं। तो पृथु महाराज ने बताया कि हे सभाजन, आप सभी का बहुत अच्छा सौभाग्य हो, भगवान की कृपा से मुझे इस धरती का राजा बनाया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने सारे निर्देशों का पालन करूंगा, सारे कर्तव्यों का पालन करूंगा, तो मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। और कोई भी राजा जो कि अपने सब्जेक्ट्स को वर्णाश्रम के आधार पर स्थापित नहीं करता है, परंतु केवल उनसे टैक्स वसूल करता रहता है, उस राजा को बहुत पाप क्रियाओं में पड़ना होगा। इसलिए मेरे सिटीजन्स, कृपया अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करिए, जिससे कि आप, आपके राजा को भी फायदा होगा, आपके आपको भी फायदा होगा। इसके बाद पृथु महाराज के और भी निर्देश हैं कि आप सभी को शास्त्रों को मानना चाहिए, क्योंकि सभी शास्त्रों के पीछे भगवान स्वयं उपस्थित हैं, और भगवान को सेवा करने का जो टेंडेंसी है, इच्छा है, वो तुरंत हृदय के अंदर की गंदगी को साफ कर देती है। इसलिए आप सभी को भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए, अपने मन, अपने विचार, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करके उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आप सभी को से ब्लेसिंग प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे मैं भगवान के चरणों, भगवान और ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरणों की धूल अपने ऊपर लेके हमेशा उपस्थित रहूं। इस प्रकार से जब महाराज पृथु से सुना तो उस असेंबली के सभी मेंबर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हे राजन, ये ऐसा वैदिक कंक्लूजन कि कोई व्यक्ति जो जिसके अच्छे पुत्र हों वो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, आपसे ये डिमोन्स्ट्रेट होता है। हालांकि आपके पिता बहुत पापी थे, राजा वेन, परंतु उनको नरक, आपने अपने भक्ति से, आपने अपने चरित्र से, आपने अपने क्रियाकलापों से अपने पिता को अपने नरक से बाहर निकाल दिया है, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को नरक से बाहर निकाल दिया था। और चूंकि आप भगवान विष्णु की ग्लोरीज को प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम सभी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके डायरेक्टली अंडर गाइडेंस में रह रहे हैं। आपके गाइडेंस में रहते रहते हम इस संसार को पार कर जाएंगे। और जब ये बात चल रही थी पृथु और उनके नागरिकों के बीच में, उसी समय चार कुमार वहां पर उपस्थित होते हैं। इन चार कुमारों के बारे में भगवान विष्णु ने भी पहले बताया था। तो ये चार कुमार वहां पर उपस्थित होते हैं, और जैसे ही प्रथम महाराज चारू कुमारों को देखते हैं तो तुरंत अपने स्थान से उठ के उनका स्वागत करते हैं। चारू कुमार अपना सीट स्वीकार करते हैं और फिर महाराज प्रथु उनका चरण चरण अभिषेक करते हैं। और महाराज प्रथु फिर बहुत विनम्रता और बहुत सौम्यपन व्यक्त करते हुए बताते हैं कि हे ऋषिवर, बहुत बड़े बड़े योगी भी आपको नहीं देख पाते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मैंने कौन से पुण्य कार्य किए थे जिससे कि आप अभी यहाँ पे मेरे सामने उपस्थित हैं। और जो भी आपके जैसे वैष्णवों को प्लीज करता है उसके लिए संसार में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। तो कृपया मुझे बताइए कि मेरे जैसे लोग जो इस संसार में फंसे हुए हैं, जो केवल भोग करना चाहते हैं, कैसे उनको अच्छा भाग्य प्राप्त हो सकता है। मैं इतना कन्विंस हूं कि आपके जैसी जो पर्सनालिटीज हैं वो ही इस संसार में जो फंसे हुए लोग हैं केवल उनके सबसे अच्छे मित्र हैं। पृथु महाराज की वाणी को सुनने के बाद चार कुमारों ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये सभी सभी जीवों को प्रसन्न करने वाला है। हम देखते हैं ये सेम प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, पूरे भागवतम के अंदर कई लोग इस प्रश्न को पूछते हैं, बार बार ये प्रश्न आता है, चाहे परीक्षित हो, विदुर हो, पृथु हो, इसके बाद भी पूरे भागवत में ये प्रश्न आता रहता है। और इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बहुत अच्छे अच्छे तरीके से दिया जाता है, अलग 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 लोगों, अलग अलग ऋषि मुनि के द्वारा। तो ये चार कुमार बताना प्रारंभ करते हैं कि हे पृथु, ये शास्त्रों में बताया गया है कि मानव समाज का सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होता है जब उनको बॉडीली कॉन्सेप्ट, भौतिक जीवन या शारीरिक शारीरिक बॉडीली कॉन्सेप्ट मतलब अपने आप को शरीर समझना, इस कॉन्सेप्ट से जब कोई व्यक्ति डिटैच हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। और साथ साथ भगवान कृष्ण के प्रति उसका अटैचमेंट अगर बढ़ता जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान के प्रति ये जो अटैचमेंट है ये भक्ति योग करने से प्रारंभ होता है। भक्ति योग प्रारंभ करने के लिए हमें भगवान के बारे में सुनना और भगवान के बारे में चैंट करना, ग्लोरीफाई करना, ये जरूरी होता है। केवल इसी तरह से लोग भौतिक भोग की जो इच्छा है उसको खत्म कर सकते हैं। और ऐसे भक्त को हमेशा बहुत सिंपल जीवन जीना चाहिए, शास्त्रों के सिद्धांतों को पालन करते समय उसको दूसरे दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो कि केवल पैसा प्राप्त करने में और भौतिक भोगों को प्राप्त करने में इंटरेस्टेड है। तो जो भोगी लोग हैं उनसे एसोसिएशन हमें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे ऐसे एसोसिएशन से, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों का एसोसिएशन करते हैं तो हमारा मन और इंद्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और फिर हम भी भोग की इच्छा में आगे बढ़ जाते हैं और मन बहुत एजिटेट हो जाता है। तो जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं, विषयी लोगों का संग करते हैं, तो हम कंटामिनेट हो जाते हैं और भोग की इच्छा हमारी भी बढ़ने लगती है। इसलिए भक्तों को भक्तों का संग करना चाहिए। और जब हम अगर हमें भौतिकतावादी लोगों का संग करना भी पड़े तो उनको अपना हृदय नहीं देना चाहिए, जितना जरूरत हो उतना मिनिमम उनसे क्रियाकलाप करें, उसके बाद अपना कार्य करें। इस प्रकार से चार कुमारों के द्वारा जब पृथ्वी महाराज को बताया गया तो पृथ्वी महाराज ने बोला कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु ने पहले ही बताया था कि मुझे आपका संग प्राप्त होगा और भगवान विष्णु की वाणी को पूरा करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ ऑफर करूँ। इसलिए मैं अपना अपना जीवन, अपने फैमिली मेंबर्स, अपना महल, अपना सब कुछ आपको प्रदान करना चाहता हूँ। यद्यपि मुझे ये मैं हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वस्तु है ये तो रेमनेंट्स है, वास्तविकता में ये मेरी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी वास्तविक, हमने पिछले क्लास में देखा भी था शायद, या किसी एक क्लास में ऐसा डिस्कस किया था कि संसार की पूरी प्रॉपर्टी ब्राह्मणों की है और ब्राह्मण उनको प्रदान करते हैं राजाओं को, जिससे कि राजा उसमें उसको रूल कर सकें, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं इसलिए वो संसार को रूल करना नहीं चाहते। तो हालांकि पूरा संसार उनकी प्रॉपर्टी है परंतु वो राजा को दे देते हैं। तो पृथ्वी महाराज वही बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ये कृपा करके हम लोगों को प्रदान की है, तो हम लोग तो एक्चुअली प्रोप्राइटर नहीं है, हम लोग तो ब्राह्मणों का जूठन प्राप्त करने वाले हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको स्वीकार करिए। और फिर चार कुमार बहुत संतुष्ट हुए महाराज पृथु से और उन्होंने पृथु महाराज के कैरेक्टर की प्रशंसा करते करते वो अपने लोक में चले गए। उसके जाने के बाद पृथु महाराज अपने राज्य को भोगते रहे और केवल भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए क्रियाकलाप करते हैं। पृथु महाराज ने अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्रों की प्राप्ति की और उनका नाम था विजितास्व, धूम्रकेश, हरियाक्ष, द्रविण और द्रुका। इसके बाद पृथ्वी महाराज की शक्तियों का वर्णन आता है कि पृथ्वी महाराज इंद्र के समान स्ट्रांग थे और भूदेवी भूमि देवी के समान सहनशील थे। और जिस प्रकार से बरसात का पानी सभी की इच्छाओं को संतुष्ट करता है, पृथ्वी महाराज ने अपनी कृपा सभी को बरसाई थी। जैसे बरसात का पानी हर जगह गिरता है, कहीं पे वो भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार से महाराज पृथ्वी ने सबको अपनी कृपा बरसा की। और पृथ्वी महाराज समुद्र के समान थे, उनके अंदर क्या चलता था, उनके हृदय की गहराइयों में क्या चलता था, किसी को पता नहीं चलता था, इतने वो समुद्र के समान थे। और पृथ्वी महाराज सुमेरु पर्वत के समान थे, अपने लक्ष्य में स्थित होने के लिए अपने फिक्स्ड रहते थे, अपने लक्ष्य में, अपनी इच्छाओं में सुमेरु पर्वत के समान थे। पृथ्वी महाराज ऐश्वर्य में हिमालय के समान थे और हवा के समान वो हर जगह प्रतीत होते थे। और शारीरिक सुंदरता में वो कामदेव के समान थे, सोच विचार की क्षमता में वो शेर के समान थे, और इंद्रियों के नियंत्रण में वो भगवान विष्णु के समान थे। इस प्रकार से महाराज पृथु के का शारीरिक ऐश्वर्य का वर्णन दिया है। और ऐसा बताते हैं कि महाराज पृथु का ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था, और जो भी लोग उनको उनके बारे में सुनते थे, एग्जैक्टली महाराज पृथु की क्रियाकलाप उनको भगवान रामचंद्र के समान लगते थे। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र दुनिया के महान राजा थे, उसी प्रकार से महाराज पृथु को भी दुनिया के महानतम राजा बोला जाता है। वास्तविकता में तीन राजाओं को दुनिया के महानतम राजा बोला जाता है, भगवान रामचंद्र, महाराज पृथु और महाराज युधिष्ठिर। इन तीनों से ज्यादा महान राजा इस संसार के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुए। फाइनली जब महाराज पृथु ने देखा कि अभी वो वृद्ध होने वाले हैं, तो उन्होंने अपने वेल्थ को डिवाइड किया, और उसके बाद उन्होंने अपने धरती का जो शासन था अपने पुत्रों को दे दिया, और अपने नागरिकों के सराउंडेड होते हुए वो धीरे धीरे अपना राज्य छोड़ के जंगल की तरफ गए, केवल अपनी पत्नी के साथ। वानप्रस्थ आश्रम उन्होंने धारण किया। जब वो जंगल में जाते हैं तो राजा पृथु कभी पेड़ों की पत्तियों को खाते थे, कभी फल खाते थे, और कई बार कुछ भी नहीं खाते थे, केवल पानी पीते थे। इस प्रकार से पृथु महाराज तपस्या करते थे। समर के समय, गर्मी के समय पृथु महाराज सूरज के धूप में बैठ के तपस्या करते थे, चारों तरफ से अग्नि जला के। इस प्रकार पृथ्वी महाराज की तपस्याएं बहुत अनोखी हैं। दो तपस्याएं बहुत फेमस है भागवतम के अंदर, एक तो ध्रुव महाराज की तपस्या और दूसरी पृथ्वी महाराज की तपस्या। दोनों ने बहुत कठिन तपस्याएं की। पृथ्वी महाराज का यहाँ पे लिखा है कि गर्मी के समय कठिन मतलब सूर्य की रोशनी में सामने बैठ के अपने चारों तरफ आग जला लेते थे। इसके बाद बरसात के समय वो बस ठंडे पानी गिरते में नीचे तपस्या करते थे, और ठंड के समय वो नदी के अंदर जाते थे और अपने गले तक पानी में डूब के तपस्या करते थे। अगर ऐसी तपस्या हमसे कोई करने बोले भक्ति करने के लिए, तो हम भाग जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत आसान बताया है कि आप भगवान के नाम का जप करिए, उसमें आपका हो जाएगा। क्योंकि ये तपस्याएं जो है पृथ्वी महाराज की, ध्रुव महाराज की तपस्याएं, ये तपस्याएं हम नहीं कर सकते। तो पृथ्वी महाराज की तपस्या बहुत कठिन थी। उसके बाद पृथ्वी महाराज रात में केवल पत्थर के ऊपर सो जाते थे, और बहुत सारी उन्होंने तपस्याएं की। क्योंकि ये सत्य योग था, इसलिए पृथ्वी महाराज ने अष्टांग योग का पालन किया भक्ति करने के लिए, और उसके रिजल्ट से उन्होंने भगवान के लिए प्रेम प्राप्त किया। भगवान के बारे में लगातार सोचते सोचते राजा पृथु पूरी तरह से भौतिक भोग के जीवन से बाहर आ गए, और इंद्रिय फॉल्स ईगो मिथ्या अहंकार से भी बाहर आ गए। उस समय उन्होंने भगवान का दर्शन अपने हृदय में करना प्रारंभ किया। और फाइनली जब पृथु महाराज अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, तो पृथु महाराज एक योग पद्धति में बैठे, जिसमें उन्होंने अपने शरीर के सभी छिद्रों को बंद करके अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने लाइफ एयर, अपने प्राण को पहले नीचे से ऊपर तक लाए, फिर नाभि लाए, फिर हृदय में लाते हैं, फिर गले में लाते हैं, और उसके बाद अपनी आंखों के बीच से होते हुए प्राण को ब्रह्मरंध्र से निकाल देते हैं। ब्रह्मरंध्र का मतलब यहाँ पे ब्रह्मरंध्र पाया जाता है, सामान्यतः योगी वहां से प्राण को निकालते हैं और भगवत धाम जाते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ एयर को ब्रह्मरंध्र से निकाला, और उनके शरीर का जो एलिमेंट था वो भौतिक संसार में मिक्स हो गया। तो इसके द्वारा, इस पद्धति के द्वारा पृथ्वी महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया और एक रथ में बैठ के वैकुंठ की तरफ गए। पृथ्वी महाराज की वाइफ जो थी अर्ची, वो भी अपने पति के समान तपस्या करती थी, यद्यपि उनका शरीर बहुत कमजोर था। उन्होंने कभी भी इस प्रकार से जंगल का जीवन नहीं देखा था, तो बहुत पतली हो गई, बहुत कमजोर हो गई, परंतु अपने पति की सेवा करने से उनको जो प्रसन्नता मिल रही थी उससे उनको कोई कठिनाई फील नहीं हुई। पति के प्रति इतनी समर्पित थी। और जब अर्ची रानी ने देखा कि उनके पति का शरीर में अभी कोई जीवन का सिम्टम नहीं है, पृथु महाराज ने कि आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो उनको कुछ समय तक दुख हुआ, क्योंकि वो नेचुरल था दुख। अगर इतना इतने महान पति की पत्नी है तो उनको कुछ समय तक दुख हुआ, परंतु ज्यादा दुख नहीं करते हुए उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक वो लकड़ियां इकट्ठा करके वहां पे पृथु महाराज के शरीर को रखा और अग्नि लगाया। और अग्नि लगाने के बाद अर्ची ने, रानी अर्ची ने सारे क्रियाकलाप किए, नदी में स्नान किया और जल चढ़ाया, उसके बाद देवताओं को प्रणाम किया और राजा पृथु की अग्नि को सरकम्बुलेट करके, राजा पृथु का जो शरीर में जो उन्होंने अग्नि लगाया था, जो फनवेल पायर लगाया था, उसके अंदर वो एंटर कर गए, तो राजा पृथु की बॉडी के साथ उनकी बॉडी भी जल गई। और महाराज पृथु अब वैकुंठ में जाए, उनके पीछे पीछे रानी अर्ची भी वैकुंठ में गए। बहुत सारे देवता लोग, उनकी पत्नियां जो कि मंदार पर्वत पर बैठे थे, उन्होंने बहुत सारे फूल चढ़ाए उस अग्नि के ऊपर, और देवताओं की पत्नियों ने रानी अर्ची को बहुत ग्लोरीफाई किया। उन्होंने बताया कि राजा पृथु की वाइफ की बहुत प्रशंसा है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा की। जिस प्रकार से रानी अर्ची अभी भी अपने पति को फॉलो करती जा रही है, पृथु महाराज आगे आगे वैकुंठ जा रहे थे, अर्ची उनके पीछे पीछे वैकुंठ जा रहे थे। तो देव उन देवियों ने बोला कि हालांकि मनुष्य जीवन बहुत कम समय का है, परंतु वो लोग आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं अगर वो भगवत भक्ति में लगते हैं। इसलिए जिसको भी मनुष्य जीवन मिलता है और जो भगवत भक्ति में नहीं लगता है, तो अपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस यूज करता है, वो व्यक्ति बहुत स्वार्थी और बहुत मूर्ख कहलाएगा। इस प्रकार से जब ये देवियां आपस में बातचीत कर रही थी, अर्ची रानी को लेके वैकुंठ का विमान आया और वो अपने पति के पास पहुंच गई। तो यहाँ पे पृथु महाराज की कहानी, पृथु महाराज की स्टोरी कंप्लीट होती है। मैत्रेय मुनि अपनी नैरेशन को कंप्लीट करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर महाराज पृथु के इस चरित्र को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को बताता है, तो वो भी भगवत धाम चला जाएगा। जो भी महाराज पृथु के इस चरित्र को पढ़ेगा, सुनेगा या दूसरों को बताएगा, और बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कोई इन वस्तुओं को करेगा, तो वो भी भगवत धाम चला जाएगा। और जो भी बहुत सम्मान के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ इस नरेशन को सुनेगा, वो इस संसार में बहुत धनी व्यक्ति बन जाएगा अगर उसकी इच्छा है, और संसार में सारे ऐश्वर्य प्राप्त करके बाद में भगवत धाम को प्राप्त करेगा। और जो भी इस नरेशन को 3 बार सुनता है, उसका समाज में ऐश्वर्य बहुत बढ़ जाता है। अगर वो अशिक्षित हो तब भी वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा अगर पृथु महाराज के इस चरित्र को 3 बार सुनता है। महाराज पृथु के बारे में सुनना इतना शुभ है कि उससे सारे बैड लक खत्म हो जाते हैं। अगर कोई भक्त शुद्ध अवस्था में भी है, उस तब भी उसको महाराज पृथु के कैरेक्टर, उनके जीवन के बारे में सुनना चाहिए, और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। जो भी रेगुलरली इस हिस्ट्री को पढ़ता है, निश्चित है कि उसका फेथ और उसका भगवान के चरणों के प्रति फेथ और आकर्षण बढ़ेगा, और भगवान के चरणों को वो इस मनुष्य जीवन के अंत में अवश्य प्राप्त करेगा। ये पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन है, पृथु महाराज के चरित्र का फल है। सभी भक्तों को श्रीमद भागवतम के इस सेक्शन को बहुत डीपली पढ़ना चाहिए। पृथु महाराज का सेक्शन बहुत सारी वस्तुएं सीखने के लिए है। हमने तो यहाँ पे जस्ट उसको शॉर्ट में बताया है, परंतु ये चीजें डिस्कस की, ये भागवतम में ऑलमोस्ट 7 अध्यायों में दी गई है। तो आप सभी इस सेक्शन को पढ़िए, पृथु महाराज का सेक्शन, ध्रुव महाराज का सेक्शन। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्राचीन बरही सब पुरंजन की स्टोरी हम प्रारंभ करेंगे, प्रचेतस की स्टोरी प्रारंभ करेंगे 4वें कैंटो में। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस मित्र,
अभी मेरे को बस लास्ट का 4-5 मिनट्स का वापस अगर आप मुझे बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा, मैं थोड़ा मिस कर गई।
लास्ट का 4-5 मिनट का
यस प्रभु जी,
कहाँ तक सुना था आपने?
कि मंदार पर्वत पर जो रानी अर्ची थी, उन्होंने
ओके
उन्होंने भी वो फायर में वो चले गए, और सारे स्वर्ग की रानियों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद से प्रभु जी मेरा थोड़ा मिस हो गया, सॉरी।
तो स्वर्ग की जो देवियां थी वो उनके बारे में बातचीत कर रही थी। उनके बातचीत करते करते जो अर्ची थी वो वैकुंठ चली गई अपने पति के साथ। उसके बाद मैत्रेय मुनि बताते हैं कि जो भी व्यक्ति पृथु महाराज के इस चरित्र को सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को बताता है और ये सब कुछ वो बहुत श्रद्धा के साथ करता है तो वो व्यक्ति भी भगवत धाम वापिस जाएगा, निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। और जो भी बहुत ध्यान से इस पृथु महाराज के चरित्र को सुनेगा, अगर उसको संसार में ऐश्वर्य की इच्छा है तो उसको संसार में बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होगा, बहुत पुत्र और धन संपत्ति प्राप्त होगी और वो भगवत भक्ति की भी प्राप्ति होगी। और जो भी इस नैवेशन को 3 बार सुनता है वो उसका समाज में बहुत रेप्यूटेशन बढ़ेगा। अगर वो इलिटरेट निरक्षर भी है तब भी वो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा इस नैवेशन को 3 बार सुनने के कारण। और अगर कोई शुद्ध भक्त भी है तब भी अगर वो अगर कोई शुद्ध भक्त है ऑलरेडी भगवान कृष्ण में डूबा हुआ है तब भी उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो पृथ्वी महाराज के कैरेक्टर और पृथ्वी महाराज की लाइफ को सुने और दूसरों को भी सुनाए। और जो भी रेगुलरली इस हिस्ट्री को पढ़ेगा उसका श्रद्धा और विश्वास भगवान के चरणों के प्रति बढ़ेगा और भगवान की सेवा में वो लगातार लगा रहेगा। ओके, यहीं तक हमने डिस्कस किया।
ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। तो इसके आगे
प्रभु जी
हम,
हरे कृष्ण।
हाँ जय मित्र,
हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु
हाँ बताइए।
एक क्वेश्चन था कि ध्रुव महाराज और पृथ्वी महाराज के बीच में कितना अंतर था भक्ति में?
उनके बीच में मतलब
भक्ति में प्रभु कितना अंतर था उन दोनों के बीच में?
दोनों दोनों ही शुद्ध भक्त थे, दोनों
हाँ प्रभु, मतलब जो
ही शुद्ध भक्त थे।
ध्रुव महाराज से जो बचपन से ही, मतलब बचपन से
एक्चुअली ध्रुव
ही,
महाराज ने बचपन में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली थी, परंतु पृथ्वी महाराज का हमें देखना होगा, पृथ्वी महाराज को भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति प्रदान की थी। तो पृथ्वी महाराज एक अवतार भी कहलाते हैं, विष्णु जी के अवेश अवतार कहलाते हैं, उनको स्पेशल शक्ति देके भगवान विष्णु ने भेजा था।
ओके
ओके तो
ओके।
एक और प्रश्न है, पृथ्वी महाराज भगवान विष्णु का शक्ति अवेश अवतार है या विष्णु तत्व है? पृथ्वी महाराज विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है, परंतु भगवान विष्णु की शक्ति उनमें दी गई है। विष्णु तत्व में नहीं आते हैं, वो शक्ति आवेश अवतार में आते हैं। ओके तो कल हम इसके आगे राजा पूरन जन की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।